दौला पुस्तक चौदवी लेक्चर नंबर 6 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोहे सौवसाहूणम् सिद्धे विवुद्धसयले अज्जत्थबहित्थबन्धनुं मुक्के भत्तीये अहं नम्यूं पुनो पुनो बंधनम वोचम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह दौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और उसमें भी हम बंधन अनियोग द्वार को देखते हुए पृष्ठ संख्या 52 पर आ गए हैं। अभी हमारा बंधनीय अनुयोग द्वार चल रहा है। कल हमने वो बंधक की भी बात देखी थी, जो सातवें पुस्तक में जो पूरा है उसका वर्णन है क्षुल्लक बंध में। वो बंधक में सारे जो मार्गणाव स्थान में कौन बंधक है कौन अनबंधक है, वे इतनी चर्चा उसमें थी। उसके पहले हमने बंधन के चार भेद देखे थे, बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। शुरुआत में बंध की चर्चा की, कल बंधक की भी, अभी बंधनीय की बात चल रही है। तो बंधनीय में यहाँ निक्षेप लगाते हैं। देखो ये बंधनीय बात यहाँ शुरू हुई है पेज नंबर 48 से। जो बंधने योग्य है उसको बंधनीय कहते हैं। तो बंध योग्य क्या है? तो कर्म और नो कर्म, उसमें ये वर्गणाओं की बात यहाँ बताई है कि जो पुद्गल जो है ये परमाणु रूप से तो नहीं बन रहे, उसके जो कुछ स्कंद बनते हैं तो जीव के साथ जिसकी बात है, तो वर्गणा, वर्ग, द्रव्य, समुहार वगैरह, उसके जो 8 अनुयोग द्वार यहाँ बताने वाले हैं उसकी चर्चा की थी। उसमें से जो वर्गणा वाला पहला प्रकरण है तो उसमें उन्होंने बताया था 51 नंबर के पेज पर कि उसके 16 अनुयोग द्वार चलेंगे वर्गणा में। अब वर्गणा दो प्रकार की है, अभ्यंतर वर्गणा और बाह्य वर्गणा। अब उसमें भी हमने देखा था कि उसमें जो निक्षेप लगाएंगे उसके ऊपर नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, यानी नाम वर्गणा, स्थापना वर्गणा, द्रव्य वर्गणा, क्षेत्र वर्गणा, काल वर्गणा और भाव वर्गणा। अब ये उसको निक्षेप की चर्चा करने के पहले उसके कौन सा निक्षेप किसने का विषय है, हमेशा जैसे हम देखते आए हैं, तो वर्गणा नए विभाषणता की बात पहले बताएंगे। इसलिए अभी हम 72 नंबर का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से अपना आज का विषय शुरू होता है। देखो वगण नय विभाषण दाए कौन ओ काओ वगणाओ इच्छदि नेगम व्यवहार संगहा सव्वाओ। जैसे हमने पहले भी बहुत बार ये निक्षेप लगाए थे, नए लगाए थे, तो कहते हैं वर्गणा नए विभाषणता का प्रकरण है। कौन नए किन वर्गणाओं को स्वीकार करता है? तो कहते हैं नैगम, व्यवहार और संग्रह नए सब वर्गणाओं को स्वीकार करते हैं, यानी सभी निक्षेप उसके विषय होते हैं, क्योंकि इन तीनों द्रव्यार्थिक नयों के 6 निक्षेप विषय है, इस बात के स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं है। एक 6 निक्षेप बताएंगे अश्विन भाई, बरोबर, वो सारे इसके विषय होते हैं, क्योंकि वो द्रव्यों को विषय करते हैं, द्रव्यार्थिक नये है, परंतु 6 निक्षेप इसके विषय होते हैं। अब उजुसुदो ठवण वगणाम नैच्छदि, पहले भी हमने देखा था, ऋजु सूत्र ने स्थापना को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि नीचे लिखा ना ऋजु सूत्र ने स्थापना वर्गणा को स्वीकार नहीं करता, यानी स्थापना निक्षेप इस नय का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि संकल्पवश अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप से परिवर्तन होने में विरोध आता है। ऋजु सूत्र नय वैसे तो पर्याय को विषय करने वाला होता है, और वो संकल्प हमने किया है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, परंतु वो उस रूप परिणमित तो नहीं हो रहा है। सद्गणो नाम वग्गणाम भाव वग्गणाम च इच्छति, शब्द ने नाम वर्गणा और भाव वर्गणा को स्वीकार करता है, क्योंकि इस नय के विषय अन्य निक्षेप नहीं है। अन्य ने कौन से? हाँ, देखो स्थापना नहीं है, नहीं करता ना। देखो देखो क्षेत्र और काल किसको कहना, पेज नंबर 52 निकालिए, देखिए ये सारे ही निक्षेप यहाँ समझाए, फिर उसको उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं पहली लाइन से। वर्गणा शब्द नाम वर्गणा है, वह यह है, इस प्रकार बुद्धि द्वारा वर्गणा रूप से संकल्पित अर्थ है पदार्थ स्थापना वर्गणा है। ऋजु सूत्र ने नहीं स्वीकार करता तो आगे वाले ने उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, द्रव्य वर्गणा दो प्रकार की है, वो तो हमने द्रव्य निक्षेप के हमेशा भेद देखते हैं, आगम नो आगम वगैरह वगैरह, फिर नो आगम के अन्य अन्य भेद, उसको छोड़कर नीचे आना। देखो क्षेत्र वर्गणा किसको कहा, एक आकाश प्रदेश प्रमाण अवगाहना से लेकर, अवगाहना उसकी जो यानी वर्गणा की जो अवगाहना है तो उसको क्षेत्र वर्गणा बताया, और उसकी जो कर्म स्थिति कर्म द्रव्य की अपेक्षा, वर्गणा में कर्म द्रव्य की अपेक्षा एक समय अधिक आवली से लेकर, क्योंकि उदीर्णा के द्वारा वो इसका उतनी स्थिति बन सकती है, फिर उत्कृष्ट कर्म स्थिति तक, और नो कर्म द्रव्य की अपेक्षा एक समय से लेकर, क्योंकि उसमें आबाधा नहीं होती, शरीर के परमाणु बंधे हैं, दूसरे समय से उसका एक एक समय पर एक एक निषेक खिरना चालू हो जाता है, उसको काल कहा था। भाव तो हमें पता है, पेज नंबर 53 पर अपना विषय चल रहा था, आपके प्रश्न के लिए वहां चले गए थे, है ना। हमने 72 73 और 74 भी सूत्र पढ़ा था कि शब्द नय नाम वर्गणा और भाव वर्गणा को ही स्वीकार करता है, अन्य को नहीं। शंका, यहाँ किस निक्षेप का प्रकरण है? समाधान, यानी कौन से नए किसको विषय करते हैं, बहुत विस्तार नहीं किया है, अन्यत्र बहुत विस्तार हमने देखा था, परंतु कौन सा निक्षेप का हमारा यहाँ इस यहाँ हमारा प्रयोजन किससे है? तो कहते हैं नो आगम पुद्गल द्रव्य निक्षेप का प्रकरण है, क्योंकि यहाँ पर जीव धर्म अधर्म काल और आकाश द्रव्य वर्गणाओं से प्रयोजन नहीं है। देखो क्या कहना चाहते हैं, वैसे हमने बंध में तो आकाश के अपने प्रदेश अपने से बनते इस तरह से उसको भी लिया था, यानी वो वैश्रेषिक वगैरह में हमने देखा था उसको। अब यहाँ देखो फिर से हम पीछे चलते हैं, नो आगम पुद्गल द्रव्य निक्षेप, इसी पेज पर 52 पेज पर है ना, वहां निक्षेपों के नाम बताए हैं। द्रव्य निक्षेप में आगम नो आगम दो भेद थे, नो आगम द्रव्य वर्गणा में ज्ञायक शरीर भावी और तद्व्यतिरिक्त थे, और तद्व्यतिरिक्त में कर्म वर्गणा और नो कर्म वर्गणा था। तो ये जो है नो आगम पुद्गल द्रव्य निक्षेप का प्रकरण है, पुद्गलों में इसका हम निक्षेप लगाएंगे, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा जीव धर्म अधर्म आकाश और काल इनके द्रव्य वर्गणाओं से प्रयोजन नहीं है। अब हमारा निक्षेप हुआ, नए विभाषणता हो गई। अब वर्गणा द्रव्य समुदाहार का प्रकरण, क्योंकि एक एक अनियोग द्वार हमने कितने हमको देखने हैं, 16। 16 में से पहले वर्गणा बताए, वर्गणा निक्षेप, पेज नंबर 51 पर वर्गणा निक्षेप हुआ, उसमें अगर आपको नंबर डालना है तो। फिर नए विभाषणता 2 नंबर की थी, वर्गणा नए विभाषणता। अब द्रव्य वर्गणा द्रव्य समुदाहार, ये 16 अनुयोग द्वार में से ये तीसरा अनुयोग द्वार, अब उसको पढ़ेंगे। वग्गणा दौव समुदाहारे ती तथ इमानी 14 अनुयोग द्वाराणी। एक एक में और भेद 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 चल रहे हैं ना। पहले में वग्गणा परुवणा, वग्गणा निरुवणा, वग्गणा धुआ धुआणु गमो, वग्गणा शांत निरंतरानुगमो, वग्गणा ओज जुम्मानुगमो, वग्गणा खेतानुगमो, वग्गणा फोसणानुगमो यानी स्पर्शन, वग्गणा कालानुगमो, वग्गणा अंतरानुगमो, वग्गणा भावानुगमो, वग्गणा चौनयनानुगमो, वग्गणा वनयनानुगमो, उपनयनानुगम, फिर वग्गणा परिमाणानुगमो, वग्गणा भागा भागानुगमो और वग्गणा अप्पा बहुएत्ती, 14 हो गए। अभी इसका हिंदी पढ़ते हैं। नीचे वर्गणा द्रव्य समुदाहार का प्रकरण है, उसमें ये 14 अनियोग द्वार है। वर्गणा प्ररूपणा, वर्गणा निरूपणा, वर्गणा ध्रुव अध्रुव अनुगम, वर्गणा सांतर निरंतर अनुगम, वर्गणा ओज युग्म अनुगम, युग्म हुआ युग्म चाहिए, युग्मानुगम, युग्गा हुए ना युग्मा करना, मा लगाना, युग्मानुगम, वर्गणा क्षेत्रानुगम, वर्गणा स्पर्शनानुगम, वर्गणा कालानुगम, वर्गणा अंतरानुगम, वर्गणा भावानुगम, वर्गणा उपनयानुगम, वर्गणा परिमाणानुगम, वर्गणा भागा भागानुगम और वर्गणा अल्प बहुत्व अनुगम। शंका, वर्गणा प्ररूपणा 16 अनुयोग द्वारों के द्वारा करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करके, वो वर के हुआ करके, फिर यहाँ फिर वहाँ प्रारंभ के 2 ही अनुयोग द्वारों का कथन करके और शेष 14 अनुयोगों द्वारों के द्वारा वर्गणा का कथन न करके वर्गणा द्रव्य समुदाहार का कथन किस लिए किया जा रहा है? प्रश्न समझ में आई बात? देखो पहले जो हमने 16 नाम देखे थे वो निकालो 50 नंबर के पेज पर, वहां वर्गणा के प्रकरण में 16 अनुयोग जो नाम बताए थे ना, उसमें से पहला था वर्गणा निक्षेप और दूसरा था वर्गणा नए विभाषणता और फिर उसके बाद वर्गणा प्ररूपणा निरूपणा वगैरह जो सभी बातें हैं और वो सब उन्होंने वर्गणा द्रव्य समुदाहार में इकट्ठे करके वो 14 इसके भेद बताए। तो इसीलिए उन्होंने प्रश्न पूछा ऐसा क्यों किया। वही ना, हाँ। परंतु देखो 49 पेज पर फिर निकालो पहली लाइन, वहां क्या थे? 8 भेद किए थे वर्गणा, फिर दूसरा नंबर पर वर्गणा द्रव्य समुदाहार, परंतु उन्होंने वर्गणा के 16 बताए थे। अब वर्गणा में 2 ही बताए और बाकी 14 समुदाहार में इंक्लूड कर दिए, ऐसा क्यों? ये प्रश्न है, हमें प्रश्न समझना है बस। ख्याल में आया था उनका प्रश्न क्यों ऐसा हुआ? तो बाकी 14 है वर्गणा में नए निक्षेप 2 ही बताए और बाकी 14 वर्गणा द्रव्य समुदाहार में इंक्लूड कर दिए, ये ऐसा क्यों? अभी उसका उत्तर यहाँ दे देंगे। समाधान, नहीं, क्योंकि वर्गणा प्ररूपणा अनुयोग द्वार वर्गणाओं की एक श्रेणी का कथन करता है, किंतु वर्गणा द्रव्य समुदाहार वर्गणाओं की नाना और एक श्रेणियों का कथन करता है। इसलिए वर्गणा द्रव्य समुदाहार प्ररूपणा वर्गणा प्ररूपणा की अविनाभाविनी है ऐसा समझकर वर्गणा द्रव्य समुदाहार का कथन आरंभ किया है। अन्यथा ग्रंथ के बहुत बढ़ जाने का भय था, जिससे पुनरुक्त दोष का प्रसंग आता। यानी उसमें तो एक श्रेणी की बात है, हमने देखी परमाणु से लेकर महास्कंद तक, और यहाँ इनके तो एक श्रेणी नाना श्रेणी दोनों का कथन आएगा, तो इसमें भी वही बातें आएगी, इसलिए डायरेक्ट उन्हें समुदाहार की बात उठाई। अब 76। अभी नाना श्रेणियों में क्या बताते वो देखेंगे, परंतु एक श्रेणी में यानी एक पुद्गल परमाणु से लेकर बढ़ते हुए की बात है। हाँ, वर्गणाओं की बात है। देखो अभी 76 नंबर। वग्गण परुवण दाए इमा एय पदेशीय परमाणु पुग्गल दव्व वग्गणा नाम। वर्गणा की प्ररूपणा करने पर अभी अलग अलग वर्गणाओं के नाम बताएंगे। यहाँ पर यह एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा है। यहाँ सर्वप्रथम श्रेणी का अवलंबन लेकर वर्गणा का कथन करते हैं। एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य वर्गणा परमाणु स्वरूप होती है, अन्यथा एक प्रदेशी यह विशेषण नहीं बन सकता। यानी सिंगल सिंगल जो परमाणु है उसको एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य वर्गणा कहते हैं। शंका, परमाणु अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि उसका इंद्रियों द्वारा वो दारा हुआ इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता ऐसा सूत्र वचन है, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। अवधि ज्ञान का केवल ज्ञान का भले विषय है, परंतु वो इंद्रियों के द्वारा हम नहीं जान सकते उसको। इसलिए उसके लिए सूत्र में इमा ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश नहीं बन सकता। क्या कहा, इमा यानी क्या, यह। हम यह सर्वनाम क्यों बताते हैं, सामने कोई चीज है तो यह, तो इसलिए ये इमा से क्यों लगाया उन्होंने। वही क्या है आगे लिखा है, इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता। देखो देखो, हम कहेंगे यह क्या है, हाँ, रूल है, हाँ, पट्टी हम कहें, यह रबर है, यह पे कागज है, यह पुस्तक है, ये हमें जो जान रहे उसको यह कहते हैं ना। हम यह किसको कहते हैं, जो चीज हम जान सकते हैं सामने, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि परमाणु प्रत्यक्ष ज्ञान की बात नहीं यहाँ पर। आगे लिखा है क्योंकि उसका इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता, ये उनका प्रश्न है। तो इमा ऐसा क्यों कहा, समाधान, नहीं, क्योंकि आगम प्रमाण से, आगम प्रमाण ये भी प्रमाण ज्ञान है, सिद्ध परमाणु आगम प्रमाण से सिद्ध, यानी जो आगम से जो सिद्ध हुआ, चाहे आगम में जो बताया है वो आगम से सिद्ध हुआ है, यानी प्रूव हुआ है। आगम प्रमाण से सिद्ध परमाणु विषय ज्ञान के प्रत्यक्ष रूप होने पर इमा इस प्रकार प्रत्यक्ष निर्देश बन जाता है। ये हमारा जो श्रुत ज्ञान है आगम प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान ही ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, परंतु उसको आगम प्रत्यक्ष कहते हैं, वो सम्यक ज्ञान का भेद है। तो हम परमाणु है समय है वो हम आगम से जानते हैं, इसलिए यह परमाणु ये कह दिया। इसलिए वो इमा इस प्रकार प्रत्यक्ष निर्देश बन जाता है। फिर शंका, परिक्रम में परमाणु को अप्रदेशी कहा है, परंतु यहाँ पर उसे एक प्रदेशी कहा है, इसलिए इन दोनों सूत्रों में विरोध कैसे नहीं होगा। इवन काल द्रव्य को भी अप्रदेशी कहने की पद्धति है ना, वो है एक प्रदेशी, इसीलिए प्रश्न पूछा। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि परमाणु के एक प्रदेश को छोड़कर द्वितीयादि प्रदेश होते हैं चाहिए, नहीं होते नहीं, क्योंकि आगे उसका निषेध किया है। द्वितीय आदि प्रदेश होते हैं इस बात का परिक्रम में निषेध किया है। देखो ऊपर देखो प्राकृत में एक पद, नीचे से दूसरी लाइन, एक पदेशम मोत्तुण विद्यादि पदेशानम द्वितीयादि प्रदेशों का तथ्य परिसेह करना दो, वहां प्रतिषेध किया ने निषेध किया है। आप में बराबर है क्या? नहीं लिखा है क्या? लिखा ही नहीं है। फिर से आपका वाक्य पढ़िए। हाँ अगर नहीं होते इसका निषेध करेंगे तो होते ही सिद्ध होगा। नहीं शब्द निकाल दो। हाँ यानी द्वितीयादि प्रदेश होने का, दैट इज बेटर। वही बात होती है ना, दूसरा नहीं है। यहाँ क्या लिखा, निषेध किस बात का है? द्वितीयादि होने का निषेध है, यानी द्वितीयादि नहीं होते ये बात सिद्ध हो गई। यहाँ देखो एक प्रदेश को छोड़कर द्वितीयादि प्रदेश होने का परिक्रम में निषेध किया है। अरे एक प्रदेशी को ही अप्रदेशी कहा, यही तो कह रहे कब से। नहीं समझे आप? फिर से पढ़ते देखो, अभी सही पढ़ रही मैं। परमाणु के एक प्रदेश को छोड़कर द्वितीयादि प्रदेश होने का परिक्रम में निषेध किया है, ये सरल है ना अभी। यानी क्या, जिसमें द्वितीयादि प्रदेश नहीं है वह अप्रदेश परमाणु है, यह उसकी व्युत्पत्ति है। यदि अप्रदेश पद का यह अर्थ न किया जाए तो जिस प्रकार गधे के सिंगों का असत्व है उसी प्रकार परमाणु के भी असत्व का प्रसंग आता है। अप्रदेश यानी उसको तो क्षेत्र ही नहीं तो द्रव्य भी नहीं रहेगा, बिना क्षेत्र का कोई द्रव्य ही नहीं रहेगा, उसका अपना अपना कोई ना कोई क्षेत्र तो है ही। वो तो एक प्रदेश ही है परंतु उसमें दूसरा प्रदेश कभी नहीं पाया जाएगा, वो सिंगल प्रदेश ही रहेगा, इसलिए अप्रदेश ही कहते हैं। शंका, परमाणु पुद्गल रूप है यह बात कैसे सिद्ध होती है? समाधान, उसमें अन्य पुद्गलों के साथ मिलने की शक्ति संभव है, इससे सिद्ध होता है कि परमाणु पुद्गल रूप है। देखो पुद्गल किसको कहेंगे, जिसमें वो जुड़ने की गलने की जो शक्ति है, तो एक परमाणु है वो अन्य परमाणुओं से अन्य स्कंदों से जुड़ सकता है, यही सिद्ध होता है इसी से कि वो पुद्गल है। फिर शंका, परमाणु सदाकाल परमाणु रूप से अवस्थित नहीं रहते, इसलिए उनमें द्रव्यपना नहीं बनता। क्या कहा, वो हमेशा ही परमाणु रूप रहेंगे कोई बात नहीं है, उसके स्कंद हो गए बिछड़ेंगे फिर, ये उनकी शंका है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि परमाणुओं का पुद्गल रूप से उत्पाद और विनाश नहीं होता, इसलिए उनमें भी द्रव्यपना सिद्ध होता है। यानी वो पुद्गल, देखो उसके स्कंद रूप से उत्पाद होता है, पुद्गल रूप से उत्पाद नहीं होता। पुद्गल तो है ही अनादि से, अनादि से वो पुद्गल है, पुद्गल पना नया उत्पन्न नहीं हुआ है और पुद्गल पना कभी नष्ट नहीं होगा। ये हमने एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा को देखा। अब आगे बढ़ते हैं, इमा द्विपदेशीय परमाणु पोग्गल दव्य वर्गणा नाम, यह द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा है। अजघन्य स्निग्ध रुक्ष गुण वाले दो परमाणुओं के समुदाय समागम से द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है। क्या कहा, यह हमने सारे बंध के नियम देखे थे, जघन्य का बंध नहीं होता, तो परमाणु में भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट कोई भी उसका गुण हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि स्कंद होने पर ही उसके अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ेंगे, परमाणु रूप से रहते हुए उसके अविभाग प्रतिच्छेद 2, 3, 4, 10 कुछ भी हो सकेंगे। तो कहते उसका वृक्ष के साथ बंध होता है, और हमने देखा था यहाँ जिसको स्वीकार किया है वृक्ष के भी कितने भी उसके अविभाग प्रतिच्छेद हो उसके साथ वो बंध है, एक्सेप्ट जघन्य। अजघन्य स्निग्ध वृक्ष कुछ भी हो उनके अविभाग प्रतिच्छेद वो आपस में बनते हैं। तो दो परमाणुओं का द्विप्रदेशी पुद्गल परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गना होती है। अब शंका कर की शंका बड़ी है, पर समागम क्या एक देशे ने होता है या सर्वात्मना होता है, यानी उसके पार्टली वो उसका पार्ट और इसका पार्ट बनता है कि पूरे का पूरा बनता है। सर्वात्मना तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने पर अनंत परमाणुओं का भी यदि समागम हो जाए तो भी परमाणु मात्र परिणाम प्राप्त होता है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर परमाणु वर्गणा के सिवा शेष सब वर्गणाओं का अभाव प्राप्त होता है। यानी उनको ऐसा समझे सब मिटकर एक परमाणु मात्र हो जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। एक देश ने समागम भी नहीं बनता, क्योंकि ऐसा होने पर परमाणु सावयव प्राप्त होता है, क्योंकि परमाणु एक प्रदेश ही है, उसका एक देश क्या होगा, ये कहना है। यदि परमाणु को सावयव माना जाता है तो अनवस्था दोष आता है, अनवस्था नहीं आवे यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर सब स्थूल कार्यों की अनुत्पत्ति का प्रसंग आता है, और एक प्रदेशी दो परमाणुओं के सर्वात्मना समागम को छोड़कर एक देशेन समागम बन नहीं सकता, क्योंकि परमाणु के द्वितीय आदि प्रदेश नहीं पाया जाता, ये लंबी चौड़ी उनकी शंका है। समाधान, यह इस शंका का समाधान करते हैं कि द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर दो परमाणुओं का कथनचित सर्वात्मना समागम होता है, क्योंकि परमाणु निरवयव होता है, उसके कोई अवयव नहीं, दो प्रदेश तो है नहीं। जो परमाणु जिस कार्य के आरंभक होते हैं वे उसके अवयव होते हैं, और उनके द्वारा आरंभ किया गया कार्य अवयवी होता है। परमाणु अन्य से उत्पन्न होता है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके आरंभक अन्य पदार्थ नहीं पाए जाते, वो किसी के द्वारा वो उत्पन्न नहीं होता परमाणु, और यदि उसके आरंभक अन्य पदार्थ होते हैं ऐसा माना जाता है तो यह परमाणु नहीं ठहरता, क्योंकि इस तरह इससे भी सूक्ष्म अन्य पदार्थों का सद्भाव सिद्ध होता है। एक संख्या वाले परमाणु में द्वितीयादि संख्या होती है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक को दो रूप मानने में विरोध आता है। दूसरी बात, यदि परमाणु के अवयव होते हैं ऐसा माना जाए तो परमाणु को अवयवी होना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि अवयव के विभाग द्वारा अवयवों के संयोग का विनाश होने पर परमाणु का अभाव प्राप्त होता है, पर ऐसा है नहीं है। क्योंकि कारण का अभाव होने से सब स्थूल कार्यों का भी अभाव प्राप्त होता है, यानी परमाणु के अभाव हो जाएगा तो बाकी कोई स्थूल कार्य नहीं होंगे। परमाणु के कल्पित रूप अवयव होते हैं यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह मानने पर अव्यवस्था प्राप्त होती है, इसलिए परमाणु को निरवयव होना चाहिए। हमने वो सबसे छोटा अंश है जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, अतः सिद्ध होता है परमाणुओं का कथनचित सर्वात्मना समागम होता है। ऊपर ही बताया था द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन लेने पर, पहली लाइन में बताया था निरवय परमाणुओं से स्थूल कार्य की उत्पत्ति नहीं बनेगी यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि निरवय परमाणुओं के सर्वात्मना समागम से स्थूल कार्य की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं आता। कार्य ने यहाँ पर स्कंद रूप कार्य ही लेना है ना, परमाणु से कौन से कार्य बनेंगे, अब कहते हैं पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन करने पर कथनचित एक देशे न समागम होता है। परमाणु के अवयव नहीं होते यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि उसके उपरिम अधस्तन मध्यम और उपरिम भाग न हो तो परमाणु का ही अभाव प्राप्त होता है। ये भाग कल्पित रूप होते हैं यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणु में ऊर्ध्व भाग अधो भाग और मध्य भाग तथा उपरिम भाग कल्पना के बिना भी उपलब्ध होते हैं, तथा परमाणु के अवयव है इसलिए उनका सर्वत्र विभाग ही होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि इस तरह मानने पर तो सब वस्तुओं के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। जिनका भिन्न भिन्न प्रमाणों से ग्रहण होता है और जो भिन्न भिन्न दिशा वाले हैं वे एक है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर विरोध आता है। अवयवों से परमाणु नहीं बना है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अवयवों के समूह रूप ही परमाणु दिखाई देता है, तथा अवयवों के संयोग का विनाश होना चाहिए यह भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि अनादि संयोग के होने पर उसका विनाश नहीं होता। इसलिए द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा सिद्ध होती है यह प्ररूपना आगे सर्वत्र करनी चाहिए। ने यहाँ जो विस्तार से बताया है कि दो परमाणुओं का जो संयोग से वो जो स्कंद बना है जुड़ने से, तो द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा कहा। इसी का विशेषार्थ फिर दोबारा लेते हैं। यहाँ प्रसंग से ने विषय निकला है तो परमाणु सावयव है कि निरवयव, इस बात का विचार किया गया है। परमाणु एक और अखंड है इसलिए तो वह निरवयव माना गया है, और उसमें ऊर्ध्वादि भाग होते हैं इसलिए वह सावयव माना गया है। द्रव्यार्थिक ने अखंड द्रव्य को स्वीकार करता है और पर्यायार्थिक ने उसके भेदों को स्वीकार करता है। यही कारण है कि द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा परमाणु को निरवयव कहा है और पर्यायार्थिक ने की अपेक्षा सावयव कहा है। परमाणु का यह विश्लेषण केवल बुद्धि का व्यायाम नहीं है किंतु वास्तविक है ऐसा समझना चाहिए। ऊपर बताए थे ना, वो कल्पना नहीं है केवल। अब 78, अभी तो हमने एक प्रदेशी और द्विप्रदेशी देखा एवं त्रिपदेशीय चतुपदेशीय पंचपदेशीय छपदेशीय सप्तपदेशीय अठपदेशीय नवपदेशीय दसपदेशीय संखेज्य पदेशीय असंखेज्य पदेशीय परित्तपदेशीय अपरित्तपदेशीय अनंतपदेशीय अनंतानंतपदेशीय परमाणु पोगल दव्यवगणा नाम। इस प्रकार त्रिपदेशी चतुप्रदेशी पंचप्रदेशी षट्प्रदेशी सप्तप्रदेशी अष्टप्रदेशी नवप्रदेशी दसप्रदेशी संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी परितप्रदेशी अपरितप्रदेशी अनंतप्रदेशी और अनंतानंतप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है। पहले कही गई एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा एक प्रकार की होती है, तथा द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा से लेकर उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा तक यह सब संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा है। उसको सबको मिलकर नाम संख्यात प्रदेशी, एक को संख्यात नहीं कहते, एक प्रदेशी को अलग बताया अन्य से, वो एक प्रकार की है। और द्विप्रदेशी से लेकर उत्कृष्ट संख्यात तक वो सबको मिलकर एक नाम है संख्यात प्रदेशी। अभी उसके भेद कितने हो गए? हाँ, एक वाला छोड़ दे, बाकी उसमें से एक कम उत्कृष्ट संख्यात भेद होते। जैसे हम उत्कृष्ट संख्यात के बदले हम 100 समझेंगे, तो एक वाला एक प्रदेशी होगा और 2 से लेकर 100 तक 99 जो हो गए वो संख्यात प्रदेशी हो गए। इसलिए एक कम उत्कृष्ट संख्यात भेद होते हैं, वो स के ऊपर बिंदी बराबर करना। इस प्रकार ये दो वर्गणाएं हुई। देखो वर्गणा दो लिखे परंतु एक प्रदेशी तो एक ही वर्गणा है, एक प्रकार की ही है, और द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी चतुर्प्रदेशी उत्कृष्ट संख्या तक इतने सारे भेद हो जाएंगे उसके, परंतु सबको मिलकर एक नाम क्या है, संख्यात प्रदेशी। ये दूसरी हो गई उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर जघन्य असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा होती है। यह असंख्यात का मिनिमम वाला भेद। पुनः उत्तरोत्तर एक एक के मिलाने पर असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणाएं होती हैं, और ये सब उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा के प्राप्त होने तक होती है। यानी वो एक एक से बढ़ते हुए उसने कितने असंख्यात संख्यात भेद हो जाएंगे। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात में से उत्कृष्ट संख्यात के न्यून करने पर शेष जितने रूप है यानी अंक है उतनी ही असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणाएं होती है। क्या कहना चाहते हैं, असंख्यात प्रदेशी कितनी होगी, तो असंख्यात प्रदेशी का जघन्य भेद है जघन्य परिता संख्यात, और उत्कृष्ट है उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। तो हमेशा हम कैसे निकालते हैं, उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस वन, उसके बदले हम उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात में से उत्कृष्ट संख्यात ही माइनस करेंगे, हमको डायरेक्ट उत्तर मिलेगा। ख्याल में आई ना बात, अगर ऐसा निकालना है तो उत्कृष्ट असंख्यात में से जघन्य असंख्यात माइनस करो और एक मिला दो। उसके बदले उन्होंने क्या किया, उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात में से उत्कृष्ट संख्यात ही माइनस कर दिया, नीचे की फिगर माइनस की, अभी उसमें एक मिलाने की जरूरत नहीं है, तो उतने उसके भेद है। ये संख्यात प्रदेशी वर्गणाओं से असंख्यात गुणी है, क्योंकि संख्यात प्रदेशी वर्गणा कितनी है, उत्कृष्ट संख्यात माइनस वन, और असंख्यात प्रदेशी कितनी है, उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात माइनस उत्कृष्ट संख्यात, तो वो उसके असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है, असंख्यात लोग गुणकार है, ये सभी तीसरी असंख्यात प्रदेशी वर्गणा, इन सबको मिलकर एक नाम है असंख्यात प्रदेशी वर्गणा। सूत्र में कही गई परित वर्गणाएं और अपरित वर्गणाएं अनंत प्रदेशी वर्गणाओं में ही सम्मिलित है, क्योंकि अनंत और अनंतानंत से अतिरिक्त परित और अपरित संख्या उपलब्ध नहीं होती, ती करो उसको, इसलिए अनंत के विशेषण रूप से ही परित और अपरित के निर्देश का कथन करना चाहिए। यानी वो परिता संख्यात नहीं लेना, परित अनंत के रूप में उसको ले लेना है। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर जघन्य अनंत प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है, उसी को जघन्य परितानंत वाले ही बात कहेंगे। पुनः क्रम से एक एक की वृद्धि होते हुए अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान आगे जाते हैं। अपने जघन्य से अनंत प्रदेशी उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी होती है। गुणकार क्या है, अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण गुणकार है। यानी असंख्यात प्रदेशी से वो अनंत प्रदेशी हो गई। अभी सूत्र में आया हुआ परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा शब्द त्रिप्रदेशी और चतुप्रदेशी आदि पदों में सर्वत्र जोड़ना चाहिए, क्योंकि वह अंत दीपक है। इस प्रकार यह अनंत प्रदेशी द्रव्य वर्गणा चौथी है। यहाँ लिखा अनंतानंद प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है, वो त्रिप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा चतुप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा हर एक के लिए लागू होता है ये शब्द। विशेषांत नहीं, चार के बाद तीसरी लाइन, ये सब वर्गणाएं एक क्यों है, क्योंकि ये सब अनंत रूप से एक है, ये चारों ही वर्गणाएं अग्राह्य है, यानी जीव इनको ग्रहण नहीं करता है, ना एक प्रदेशी को, ना संख्यात प्रदेशी को, ना असंख्यात प्रदेशी को, ना ये अनंत प्रदेशी को। अब कहते अनंतानंत पदेशीय परमाणु पोगल दव वग्गणानम उवरी आहार दव वग्गणा नाम, हो गया ना? नहीं देखो देखो नहीं पढ़ा, ठीक है। विशेषात पढ़ते पहले, प्रथम परमाणु वर्गणा, दूसरी संख्यात वर्गणा, तीसरी असंख्यात वर्गणा और चौथी अनंत वर्गणा, ये चार प्रकार की वर्गणाएं अग्राह्य है। इसका यह आशय है कि जीव द्वारा इनका ग्रहण नहीं होता, शेष कथन सुगम है। यानी जीव के द्वारा वो आहार वर्गणा वगैरह वगैरह आगे की वर्गणा ग्राह्य पांच वर्गणाएं बताएंगे उसको। तो अभी हमने ऊपर का सूत्र पढ़ा ना, अनंतानंत पदेशीय परमाणु पोगल दव वग्गणानम उवरी आहार दव वग्गणा नाम। अनंतानंत प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा के ऊपर आहार द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी द्रव्य वर्गणा में, वो उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी कितना था? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग। एक अंक के मिलाने पर जघन्य आहार द्रव्य वर्गणा होती है। देखो ये जो हम आहार वर्गणा वगैरह जो हम बताएंगे आगे चलकर तेजस वर्गणा वगैरह, उसमें जघन्य और उत्कृष्ट भेद बताएंगे। कितने परमाणुओं का वो समूह है उसको कहेंगे जघन्य, और वहां से लेकर मैक्सिमम परमाणुओं का समूह उत्कृष्ट, वो सभी उसी का पूरे का नाम होगा आहार वर्गणा। जैसे हमने जघन्य संख्यात से लेकर उत्कृष्ट संख्यात सबको नाम क्या दिया? संख्यात वर्गणा। वैसे यहाँ आहार वर्गणा का जघन्य और उत्कृष्ट भेद बताएंगे, उसमें एक एक परमाणु से बढ़ते हुए सभी उसमें आ जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। देखो फिर से, उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी 79 का नीचे स्पष्टीकरण, उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी द्रव्य वर्गणा में, ये सभी अभी यहां से लेकर सब अनंत प्रदेशी ही होगी, पर इसको अनंत प्रदेशी द्रव्य वर्गणा जो कहा था वो अभव्यों से अनंत गुणा वाला जो है, और इनका भी प्रमाण वही कहेंगे। इवन कर्म परमाणु की भी बात उतनी होगी कारमाणु वर्गणा की, परंतु वो आगे आगे वाले भेद हो गए। हाँ वो ये है, हाँ औदारिक वैकृतिक आहारक शरीर बनने, पर ये जघन्य से तो औदारिक शरीर बनेगा, जघन्य के ओर के कुछ जो है वर्गणाएं उनसे औदारिक शरीर बनेगा, आगे वाले जो अधिक सूक्ष्म है उससे परमाणु अधिक है वैकृतिक, और फिर आगे उससे आहार। देखो फिर से पढ़ती हूँ, उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी द्रव्य वर्गणा में, वर्गणाएं नहीं वर्गणा में, एक अंक के मिलाने पर जघन्य आहार द्रव्य वर्गणा होती है। फिर एक अधिक के क्रम से, वो क्रस से हुआ क्रम से, अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण भेदों के जाने पर, देखो देखो भेद भी उतने ही चके, एक एक ओरिजिनली भी उतना ही था अभव्यों से अनंत गुणे, उसमें एक 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 बढ़ते 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 भेद भी उतने ही हो गए। भेदों के जाने पर अंतिम आहार द्रव्य वर्गणा होती है, यानी उसके अनंत भेद हो गए ना। यह जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। देखो कहीं कहीं अभी बताने वाले हैं, कहीं कहीं विशेष अधिक होगा, कहीं अनंत गुणा भी होगा, अभी कहां क्या है वो हम देख रहे हैं। विशेष अधिक क्यों है? क्योंकि दो गुना भी नहीं हुआ जघन्य से उत्कृष्ट, उसको विशेष अधिक कहेंगे हम। समझ में आती है बात? वो उत्कृष्ट को भी वही कथन होगा, सामान्य से कथन तो यही, मैं तो अभी तो कर्माणु वर्गणा की भी बात कर रही हूँ, वो भी वही कथन है। फिर भी वो जिसको हम कहेंगे पर्यायार्थिक ने कहो, या जो परमाणु की संख्या की बात करेंगे, तो एक एक से बढ़ते हुए भी उतने ही भेद हो जाते, कितने? अभी उनसे अनंत गुणे, फिर भी वो दो गुना नहीं हुए है। जघन्य से उत्कृष्ट दुगुना संख्यात गुणा नहीं कहा है, विशेष अधिक कहा है, लिखा ना जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण ऊपर यानी उसमें एक्स्ट्रा अभी नेक्स्ट वर्गणा जो ऊपर यानी एक परमाणु अधिक, क्योंकि ये हमने एक एक परमाणु से बढ़ते हुए सारे भेद देख रहे, एक श्रेणी में लिखा है। यहाँ लिखा ना, अभी जो स्पष्टीकरण हमने क्या देखा था, उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी में एक परमाणु मिलाया तो जघन्य आहार वर्गना होगी, और उसमें एक 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 बढ़ते बढ़ते उसका उत्कृष्ट हुआ आहार वर्गना का। और विशेष का प्रमाण भी कितना है, अभिवंशी अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण होता हुआ भी उत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गना के अनंत विभाग प्रमाण है। क्या डिफरेंस, यानी उसमें कितने अनंत भेद हो गए, जो हम अभ्यों से अनंत गुणा सिद्धों का अनंत भाग कहते हैं उसी में कितने अनंत भेद हो गए, है ना। शंका डैश देना यहाँ, यह किस प्रमाण से जाना जाता है, समाधान अविरुद्ध आचार्यों के वचन से जाना जाता है। यानी देखो ये दो गुना की बात छोड़ो, उत्कृष्ट से देखो उत्कृष्ट माइनस जघन्य कितना है, तो उत्कृष्ट का अनंतवा भाग है, डिफरेंस कितना है तो उत्कृष्ट का अनंतवा भाग है, ये कह रहे हैं। औदारिक वैक्रिय का आहारक शरीर के योग्य पुद्गल स्कंधों की आहार द्रव्य वर्गना संज्ञा है, इस प्रकार यह पांचवी वर्गना है। अब उसमें कितने सारे भेद हो गए, जिसमें से औदारिक शरीर बनता है, फिर आगे चलकर जिसमें से वैक्रिक बनता है, जिसमें आहारक शरीर बनता है, वगैरह वगैरह। अब 80 नंबर, आहार दव्य वग्गणानम उवरी अगहन दव्य वग्गणानाम, ग सिंगल है क्या डबल है, अगहन सिंगल ही है। आहार द्रव्य वर्गणा के ऊपर अग्रहण द्रव्य वर्गणा है, यानी जीव इसको ग्रहण नहीं करता है, वर्गणा एग्जिस्टिंग है, हाँ ये जीव नहीं ग्रहण करता। उत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर प्रथम अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी सर्व जघन्य वर्गणा होती है, फिर एक एक बढ़ाते हुए अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गणा होती है, यह जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणी होती है। देखो क्या कहा, आहार द्रव्य वर्गणा में जघन्य से उत्कृष्ट कितना था याद है, तो विशेष अधिक था, दो गुणा भी नहीं था, विशेष अधिक था। अब ये बीच वाली जो अग्रहण द्रव्य वर्गणाएं हैं वो जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणा है, डिफरेंस ख्याल में आई बात। गुणकार क्या है, हर जगह वही अव्ययों से मैंने बोला ना, वो ये अग्रहण होते होते हर एक ग्रहण वर्गणा करते करते लास्ट में कारमान वर्गणा तक पहुंचेंगे तो भी अभव्यों से अनंत गुणा ही कहने वाले हैं, एक नहीं गुणकार, वो गुणकार में भी भेद हो गए ना, हाँ परंतु कथन वही होगा। हाँ नहीं, वो कितने सूक्ष्म हो गए आगे वाले वर्गणा, इस प्रकार ये छठी वर्गणा है। छह वर्गणाओं के नाम बताएंगे अश्विन भाई, हाँ एक परमाणु की, एक प्रदेशी, फिर संख्यात प्रदेशी, फिर असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, आहार वर्गना और अग्रहण वर्गना, अग्रहण, हाँ ठीक है, अग्राह्य कहो अग्रहण कहो, यहाँ अग्रहण शब्द आया है ना, यानी जिसका ग्रहण जीव नहीं करता या ग्रहणीय नहीं, अग्राह्य। शंका, इन वर्गणाओं में एकत्व कैसे है, समाधान, अग्रहणपने की अपेक्षा इनमें एकत्व है, यही उसका एकत्व का कारण है। देखो इन्हें एक एक परमाणु से बढ़ते हुए ऐसे जो स्कंद हो गए उसको ये कह रहे हैं, है ना। पांच शरीर तथा भाषा और मन के अयोग्य जो पुद्गल स्कंद है उनकी अग्रहण वर्गणा संज्ञा है ना। उनसे पांच प्रकार के शरीर बनते हैं, ना भाषा बनते हैं, ना मन, और उनसे जो बनते हैं तो उसको ये जो ग्राह्य वर्गणा जो बताए ना, जीव के द्वारा जो ग्रहण करते हैं योग्य वो। अब अगण दव वगणानम उवरी तेया दव वगणा नाम, हाँ हाँ फिर से कभी नहीं करता, नहीं करता है। जीव आहार वर्गणा को ही ग्रहण करता है शरीर रूप परमाणु के लिए, तेजस वर्गणा ग्रहण करेगा तेजस शरीर बनाने के लिए, भाषा वर्गणा को ग्रहण करके शब्द रूप भाषा रूप परिणाम आएगा, ये नियम है। आवाज गया, हाँ बोलिए। हाँ आहार वर्गना को ग्रहण करते हैं आगे, हाँ शरीर रूप से केवल आहार वर्गना, तेजस शरीर रूप से केवल तेजस वर्गना, और ये सब मिलकर भी पांच ही वर्गना वो ग्रहण करता है, बाकी वर्गना वो ग्रहण नहीं करता है। अब देखो हमने देखा था ना, अग्रहण द्रव्य वर्गणानम उपरी तेया द्रव्य वर्गणा नाम, अग्रहण द्रव्य वर्गणा के ऊपर तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर एक परमाणु अधिक है उसके अंदर, सबसे जघन्य तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा होती है। पुनः एक एक अधिक के क्रम से अभवियों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर उत्कृष्ट तेजस शरीर द्रव्य वर्गना होती है, यह अपने जगन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। देखो अग्रहण वर्गना में जगन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणा था, आहार वर्गना में भी और तेजस वर्गना में भी जगन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है, और उसका विशेष का प्रमाण भी कितना है, अभवियों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण है, फिर भी वो दो गुना नहीं का, उससे भी कम होगा तो विशेष अधिक में चला जाता है। यह सातवीं वर्गणा है, इसके पुद्गल स्कंद तेजस शरीर के योग्य होते हैं, इसलिए यह ग्रहण वर्गणा है, यानी ये वर्गणा को ग्रहण करके वो तेजस शरीर रूप से परिणमाते हैं। 82 नंबर, तेया दव वर्गणानम उवरी अगहन दव वगणा नाम, तेजस शरीर द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर अग्रहण द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा में एक अंक मिलाने पर दूसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी पहली सर्वजघन्य अग्रहण द्रव्य वर्गणा होती है। पहली अग्रहण द्रव्य वर्गणा आहारक और तेजस शरीर वाले वर्गणाओं के बीच में थे, ये दूसरी अग्रहण तेजस के बाद और भाषा के पहले होगी। फिर आगे एक एक अधिक के क्रम से अभवियों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर दूसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है, यह अपनी जघन्य वर्गणा से अपनी उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी है। गुणकार क्या है, अभवियों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण गुणकार है, यह आठवीं वर्गणा है। मूल में भी इतने परमाणु है उससे उसी संख्या से गुणा करेंगे तो भी कथन वही आएगा। देखो यानी वो अभवियों से अनंत गुणे बात हम कहते हैं, उसके कितने भेद होने चाहिए, है ना। यह आठवीं वर्गणा हो गई, यह पांच शरीरों के ग्रहण योग्य नहीं है, इसलिए इसकी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संज्ञा है। शंका, जघन्य से उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, अविरुद्ध आचार्य वचन से जाना जाता है। अगहन द्रव्य वर्गणानम उवरी भाषा द्रव्य वर्गणानाम, अग्रहण द्रव्य वर्गणा के ऊपर भाषा द्रव्य वर्गणा है। देखो बीच में किसने प्रश्न पूछा था मुझे कि पहले भाषा को चाहिए फिर तेजस को, तेजस सूक्ष्म है, मतलब नहीं है, उल्टा है, ये उसमें कुछ गलत हुआ है, गलत हुआ है, पहले इसकी वर्गणा नहीं होनी चाहिए थी, वो सूत्र में भी ऐसा ही है और उनको ये निकाल के फिर बताया था, मुझे याद नहीं अभी, शायद वो विकास ने पूछा था या और किसी ने पूछा था। देखो 83 पढ़ा ना अभी हमने, अग्रहण द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर भाषा द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गणा में एक अंक के प्रक्षिप्त करने पर, मिलाने पर, सबसे जघन्य भाषा द्रव्य वर्गणा होती है। इससे आगे एक एक अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर भाषा द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट द्रव्य वर्गणा होती है। यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? अपनी जघन्य वर्गणा का अनंतवा भाग विशेष का प्रमाण है। देखो पहले आहार वर्गणा देखी तो उत्कृष्ट का अनंतवा भाग कहा, यहाँ जघन्य का अनंतवा भाग वो विशेष का प्रमाण बताए। प्रतिभाग क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग प्रतिभाग है, यानी किसको भाग देना है उसको प्रतिभाग कहेंगे। यह नवी वर्गणा है। भाषा द्रव्य वर्गणा के परमाणु पुद्गल स्कंद चारों भाषाओं के योग्य होते हैं तथा ढोल भेरी नगारा और मेघ का गर्जन आदि शब्दों के भी योग्य ये ही वर्गणाएं होती है। यानी जीव के द्वारा ग्रहण वाली बात तो है ही है, परंतु अन्य भी जो ये जो सारी जो अन्य जो शब्द होते हैं वाद्यों के जो भी है वो सब इसी वर्गणाओं के अंदर वो इंक्लूड होते हैं। होगी ही हो, ग्रहण अगर अनंत गुणा है तो वो भी अनंत गुणा ही होनी है, नेचुरल है ना ये। हाँ देखो देखो परमाणु स्कंद चारों भाषाओं के योग्य होते। पहले हमने भाषाओं के भेद देखे थे, आपको याद है? तत वित वो अक्षरी अनक्षरी भाषा बताई थी। हाँ अनक्षरी भी कोई जो भाषा है, भाषा का कोई भी भेद हो, हाँ आदि शब्दों के भी, ये तो वैश्रेषिक हो गए, कोई वैश्रेषिक की सीख है कोई प्रायोगिक है, ये सब अनक्षरात्मक भी आ गए ना ये। वो वैश्रेषिक, हाँ, और ये ढोल भेरी वगैरह प्रायोगिक होगा, पुरुष के प्रयोग से हो जाते हैं, यानी उसमें वो सारी भाषाएं आ गए। तत्त का वेद आया, यानी वो निरक्षरी में ले लेते हम इसको। ये अक्षरात्मक चार भाषा तथा चार भाषाओं को छोड़कर ये ले लिए उन्होंने, उस दिन हमने पढ़े थे ना भेद, उसमें निकालना पड़ेगा वो चार भाषाओं को, इसके पहले वाले अभी हमने अंदर रखी हो। मेरा कल देख के आना। हमारे अरविंद भाई होते तो निकाल देते पहले। देखो अभी आगे बढ़ते हैं। शंका, नगारा आदि के शब्दों की भाषा संज्ञा कैसे है? समाधान, नहीं, क्योंकि भाषा के समान होने से भाषा है, इस प्रकार के उपचार से नगारा आदि के शब्दों की भी भाषा संज्ञा है, उसको भाषा कह देते, ध्वनि के अर्थ में ले लेना उसको। भाषा दववगणानम उवरी अग्रहण दववगणानाम, भाषा द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर अग्रहण द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट भाषा द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर तीसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी सबसे जघन्य द्रव्य वर्गणा जघन्य वर्गणा होती है। ये जो सूत्र में आया है वो असंख्यात गुणा और अनंत गुणा, वो किसके लिए आया है? पहले तत्वार सूत्र में पहले तीन असंख्यात गुणा वाले, फिर अनंत गुणा, औदारिक से वैकिरिक, वैकिरिक से आहारक। अच्छा, वो असंख्यात गुणा वाले हैं, है ना? हाँ, और फिर आगे के अनंत गुणा वाले। आपस में ही ये बात नहीं है, मैं वो मुझे याद आया था इसलिए पूछा। देखो 84 हमने अभी पढ़ा ना ऊपर, भाषा दव वगणानम उवरी अग्रहण दव वगणानाम, भाषा द्रव्य वर्गणा के ऊपर अग्रहण द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट भाषा द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर तीसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी सबसे जघन्य वर्गणा होती है। इसके आगे एक एक अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर तीसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है। यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणी होती है। गुणकार क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण गुणकार है। यह 10वीं वर्गणा है। सभी अग्रहण वर्गणाओं में यही बात बताई, जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणा है। विशेष अधिक वो ग्राह्य वर्गणाओं में लिया है। आहार वर्गणा में जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक, तेजस वर्गणा में जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक, भाषा में भी जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक, पर बीच बीच वाली जो अग्रहण वर्गणा है उसमें अनंत गुणा है। जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणा होता है, यानी हमारी भाषा में जो ग्राह्य वर्गणा में पहली से दूसरी अनंत गुणा ही हो जाएगी ना, उसका जघन्य कितना है? इसके उत्कृष्ट से एक अधिक है, और उसके उत्कृष्ट से उसका जघन्य एक अधिक है। जैसे आहार वर्गणा से तेजस वर्गणा की कंपैरिजन करेंगे तो, यानी वहां नंबर ऑफ परमाणु अनंत गुणे हो जाएंगे। हाँ, उससे इतने भेद है, अनंतानंद भेद तो उसके हो गए। क्योंकि अभव्य कितने हैं? तो अभव्य कितने, नहीं नहीं उसका नंबर बताओ ना। अनंत जघन्य युक्त अनंत, और सिद्ध कितने हैं? अनंतानंत जो है ना, मध्यम अनंतानंत वाली बात होगी, तो बीच वाले कितने अनंत भेद हो गए सारे। हाँ देख आगे, क्या कहते बार बार, बापरे। केवल ज्ञान में कोई विस्मय नहीं है, सब कुछ जान लेते हैं ना। अरे बापरे ऐसा कुछ नहीं, अरे अरे बापरे सबका बाप है जानने वाला वो सबका। अरे कुछ नहीं होता होगा, अगर केवल ज्ञान होने पर सब विस्मय हो जाता, नहीं तो शुद्ध ज्ञान में इतनी सब बातें ख्याल में आती है तो केवल ज्ञान होने पर कोई विस्मय नहीं लगता है। नहीं समझे? नहीं समझे? हम आप जितने क्षोभ वाले को केवल ज्ञान हो जाए तो कितना, अरे बाप रे ऐसा हो जाएगा। पर वही तो 12वें गुणस्थान वाले शुद्ध ज्ञान से सब कुछ जाने, इसीलिए तो 14 पूर्वी वाले तो श्रेणी चढ़ते हुए क्यों कहा, और वो श्रेणी चढ़ते चढ़ते भी ज्ञान का विकास कितना हो जाता है। ये तो हमारी ज्ञान की कमी है, तो हमें अटपटी लगती है बातें, अविश्वसनीय लगती है। हाँ, और कितना है जीव, कौन से ग्रहण करता है, क्या है, वो कितनी बातें है। यहाँ पर हमने ग्रहण करना खा लिया तो ग्रहण किया, ऐसा नहीं हो तो। हाँ, क्या हुआ है, ये 10वीं वर्गना हो गई ना। इसके भी पुद्गल स्कंध ग्रहण योग्य नहीं होते, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर इसके अग्रहण संज्ञा नहीं बन सकती। अब 85 नंबर, अग्रहण दवो वगणाए उवरी मण दवो वगणा नाम, या मण करो, मद हुआ मण, बाण वाला न, अग्रहण द्रव्य वर्गना के ऊपर मनो द्रव्य वर्गना है। तीसरी उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गना में एक अंक के मिलाने पर जघन्य मनो द्रव्य वर्गना होती है, फिर आगे एक एक अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर उत्कृष्ट मनो द्रव्य वर्गना होती है। यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट वर्गना विशेष अधिक है, तथा विशेष का प्रमाण सबसे जघन्य द्रव्य वर्गना मनोद्रव्य वर्गना का अनंत वा भाग है, जघन्य का अनंत वा भाग है। क्योंकि आगे आगे जाकर जघन्य भी संख्या बहुत बड़ी हो रही है ना। इसका प्रतिभाग क्या है, अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण प्रतिभाग है, यह 11वीं वर्गना है। इस वर्गना से द्रव्य मन की रचना करते हैं। फिर अग्रहण वर्गना आ जाएगी, मन दव वगणाणम उवरी अग्रहण दव वगणाणाम, मनोद्रव्य वर्गनाओं के ऊपर अग्रहण द्रव्य वर्गना है। उत्कृष्ट मनोद्रव्य वर्गना में एक अंक के मिलाने पर चौथी अग्रहण द्रव्य वर्गना संबंधी सबसे जघन्य वर्गना होती है। इससे आगे एक एक प्रदेश के अधिक क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर चौथी अग्रहण द्रव्य वर्गना संबंधी उत्कृष्ट वर्गना होती है। यह अपनी जघन्य वर्गना से उत्कृष्ट वर्गना अनंत गुणी है। गुणकार क्या है, अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण गुणकार है। यह 12वीं वर्गना है। यह ग्रहण योग्य नहीं होती, क्योंकि यह न्यूनाधिक परिणाम नहीं परिमाण वाली है। परिमाण यानी प्रमाण। न्यूनाधिक क्यों कहा, कारमण से न्यून है और मनो के अधिक है, उससे अधिक है, इसे न्यूनाधिक बताया। यानी बीच वाली जो रेंज है वर्गणाओं की, उसको जीव ग्रहण नहीं करता। अगण दव वगणानम उवरी कम्मय दव वगणानाम, अग्रहण द्रव्य वर्गनाओं के ऊपर कारमण द्रव्य वर्गना है। चौथी अग्रहण द्रव्य वर्गना संबंधी उत्कृष्ट द्रव्य वर्गना में एक अंक के प्रक्षिप्त करने पर सबसे जघन्य कारमण शरीर द्रव्य वर्गना होती है। देखो इन्हें उसमें ये वर्गनाएं कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म हो रही है, और उसमें परमाणु अनंत अनंत गुणे हो रहे हैं। आगे एक एक प्रदेश अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण स्थान जाकर कार्मण द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है। यह अपनी जघन्य वर्गणा से अपनी उत्कृष्ट वर्गणा विशेष अधिक है। अब जघन्य का ही प्रमाण इतना बड़ा है, फिर भी उससे भी और विशेष अधिक कहेंगे। विशेष का प्रमाण कितना है? जघन्य कार्मण वर्गणा के अनंत विभाग प्रमाण। इसका प्रतिभाग क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण इसका प्रतिभाग है। यह 13वीं वर्गणा है। इस वर्गणा के पुद्गल स्कंध 8 कर्मों के योग्य होते हैं। अब यहाँ तक तो ग्राह्य वर्गणा जो होगी ना, 5 हो गई। कौन सी? आहार वर्गणा, फिर तेजस, भाषा, मनोवर्गणा और कारमाण वर्गणा, ये हो गई ना 5। अब कम्मय दव्य वर्गणानम उवरी ध्वखंड दव्य वर्गणा नाम, कार्मण द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर ध्रुवस्कंद द्रव्य वर्गणा है। यह ध्रुवस्कंद पद का निर्देश अंत दीपक है। इससे पिछली सब वर्गणाएं ध्रुव ही है, अर्थात अंतर से रहित है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्या कहना चाहते आगे? पहले जो पहले से एक प्रदेशी, द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, वो सारे अभी तक जो है वो हमेशा ही पाई जाएगी। इसको ध्रुव वर्गणा कहा। ये ध्रुव स्कंद जो है ये अंत दीपक है। यहाँ तक की सभी वो ध्रुव रूप से होगी ही होगी इस विश्व में। पिछली है ना, एक प्रदेशी से लेकर सब, क्योंकि आगे पीछे आप गुजराती का मत समझो। एक प्रदेशी से लेकर ऐसा लिखो ना, क्योंकि ये कौन से नंबर की है? 14वें नंबर की। तो 14 तक की सभी ध्रुव वर्गणाएं हैं। एक प्रदेशी से 14वीं तक सारी ये ध्रुव वर्गणा है। ये ध्रुव ही है, अर्थात अंतर से रहित है। ये उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ से लेकर आगे कही जाने वाली सब वर्गणाओं में अग्रहण पने की निरंतर अनुवृत्ति करनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? अभी तक जो थी ना सारी कैसी है? ध्रुव है। ध्रुव में से 5 ही ग्राह्य है, बाकी तो अग्रहण वर्गणा है। यहां से लेकर अभी आगे जितनी आने वाली है वो सारे ही अग्रहण वर्गणाएं हैं। अभी आगे की कितनी वर्गणा, जो प्रत्येक शरीर वर्गणा है और बादर शून्य बादर निगोद वर्गणा है, सूक्ष्म निगोद वर्गणा है, वो तो जीव ने जो शरीर बने आहार वर्गणा में से औदारिक शरीर बनाया है। अभी जो प्रत्येक शरीर वाले जो अग्निकायिक वगैरह है उनका जो स्कंद होगा उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहेंगे, परंतु वो जीव ग्रह उसको नहीं ग्रहण करता है। ग्रहण तो आहार वर्गणा को करता है। जो शरीर बना है उसकी दूसरी वर्गणा हो जाती है। नो कर्म मत कहो उसको, शरीर बन गया। बाद में जो उस प्रत्येक शरीर वर्गणा, जो बादर निगोद वर्गणा, वो बाद में आने वाली बात है। वो देखेंगे अब जब उसका नंबर आएगा। यानी वो ग्रहण नहीं करता, वो शरीर रूप से या भाषा रूप से उसकी जो वर्गणा है उसी को ग्रहण करेगा। वो जब आएगी उसकी चर्चा। हाँ, ना ना ना, औदारिक शरीर के आधार से वर्गणा बदल गई। वर्गणा से शरीर बन गया, अभी वो स्कंद चेंज हो गया। अब औदारिक शरीर के आधार से निगोद रहेंगे, उसका मिलकर जो एक कुछ एक बंच हो जाएगा, उसके बाद तब करेंगे जब उसका नंबर आएगा। आप अभी प्रश्न पूछने से कुछ मतलब नहीं है कि वो क्या है मालूम नहीं आपको, फिर प्रश्न क्यों पूछ रहे आप, है ना? जब वो पढ़ेंगे तो उसका उत्तर सहज मिल जाएगा आपको। यानी जीव के ग्रहण योग्य पांच ही है, बस इतना समझ लो। यहाँ तो अपना विषय यहाँ तक ही समाप्त होता है कि जीव तो पांच ही ग्रहण, इसके आगे जितनी है वो सारे अग्रहण ही है। बीच बीच में भी अग्रहण थी, पांच ग्राह्य बताए, उसके बीच चार तो अग्रहण थी और उसके पहले भी चार थी, वो भी अग्रहण ही थी। चार चार आठ पांच तेरह और ये ध्रुव 14, और ये ध्रुव से लेकर आगे की भी जितनी है वो सारे अग्रहण वर्गणा ही है। सब अग्रहण है, जीव उनको किसी भी रूप से ग्रहण नहीं करता है। जीव जो ग्रहण करता है वो पांच रूप से ही ग्रहण करता है। इसलिए क्या कहा, ये ध्रुव स्कंद शब्द यहाँ अंतिम है, यहाँ तक की 14 नंबर की ये है, 14 तक की सभी ध्रुव है, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक 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 परमाणु से बढ़ते हुए सारे ही वर्गणा हमेशा ही पाए जाएंगे, और यहाँ से आगे जितनी है वो सब अग्रहण वर्गणा ही है। यहाँ तक समझ में आई बात? ये 14 भी है। हाँ, नहीं करेगा आगे के भी नहीं करेगा। हाँ, वो बाकी भी अग्राह्य ही थी, पर वो बीच बीच में ग्रहण करता है इसलिए उसको अग्रहण नाम दे दिया उसको। ये बाकी पांच को छोड़कर सभी उसके लिए अग्रहण वर्गणा ही है। ख्याल में आती है इन बात? हाँ, अरे वो आएगी ना अभी, इसलिए यहाँ तक की ध्रुव है। तो फिर सांतर निरंतर शून्य शून्य तो एग्जिस्टेंस ही नहीं उसका, पर वो परमाणु का प्रमाण बताने के लिए वो ध्रुव शून्य या शून्य नभो वर्गणा वगैरह उसके नाम अलग अलग है। ऐसे शून्य वर्गणाएं भी चार आने वाली है, यानी 23 वर्गणाओं का जब डिस्क्रिप्शन आएगा उसमें से चार तो इस विश्व में कभी पाए ही नहीं जाएगी। मेंशन करेंगे क्योंकि वो रेंज बतानी है ना, वो उसकी रेंज बतानी है कि ये है ही नहीं, ये बताने के लिए उसके वर्गणा नाम दे दिया, पर उसका शून्य वर्गणा कह दिया। नाम से वो निश्चित होता है कि ऐसी कोई एग्जिस्टिंग है ही नहीं, कि इतने से इतने परमाणुओं का स्कंद रूप ऐसी कोई वर्गणा ही नहीं है इस विश्व में। देखो ये 14वां, दो तीन लाइन पढ़ लेते, देखो 64 पेज पर सेकंड पैराग्राफ। उत्कृष्ट कार्मण वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर जघन्य ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा होती, वो ध्रुव बराबर करना। अनंतर एक एक अधिक के क्रम से, अब कितने स्थान आगे गए देखो, सब जीवों से अनंत गुणे स्थान जाकर, अभी तो कितने स्थान जाते हैं तो द्रव्यों से अनंत गुणा वाला जो है उससे भी अनंत गुणे स्थान जाते थे, यहाँ तो जीवों से अनंत गुणे स्थान जाकर ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है। यह अपने जघन्य से अपनी उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी है, और गुणकार क्या है, सब जीवों से अनंत गुणा तो गुणकार है। ये बहुत बड़ा हुआ। हाँ, पहले जब अनंत गुणा कहते थे अग्राह्य में, तब जघन्य से उत्कृष्ट भी अभव्यों से अनंत गुणा वाला गुणकार था, अब यहाँ गुणकार जीवों से भी अनंत गुणा वाला गुणकार है। यानी ये जो वर्गणा है ध्रुव स्कंद वर्गणा, यहाँ का गुणकार जीवन से अनंत गुणा वाला हो जाता है। यह 14वीं वर्गणा है। शंका, यहाँ पर आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मण वर्गणा ही कहनी चाहिए क्योंकि वे बंधनीय है। क्या कहना चाहते है, बंधनीय के प्रकरण में जीव जिसको बांध रहे उसी को ले लो ना, बाकी क्यों कह रहे हो, ये उनका प्रश्न है। क्योंकि शेष वर्गणा नहीं कहनी चाहिए क्योंकि वे बंधनीय नहीं है। समाधान, नहीं, क्योंकि शेष वर्गणाओं का कथन किए बिना बंधनीय वर्गणाओं के कथन करने का कोई मार्ग नहीं है। जो नहीं बनती उसका भी कथन तो चाहिए, क्योंकि वर्गणा कौन कौन सी है और उसमें से कौन सी बनती है, ये कहने का प्रयोजन है। अथवा व्यतिरेक का ज्ञान हुए बिना निश्चित अन्वय के ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह व्यतिरेक क्या होता है और अन्वय क्या होता है? व्यतिरेक और अन्वय ये टर्मिनोलॉजी है, वो किसका हमने निषेध किया वो नहीं बताना है। देखो, व्यतिरेक का ज्ञान हुए बिना निश्चित अन्वय के ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। कल आप थे नहीं, कल उदाहरण भी दिया था, पूछा गया था ये पेन कौन से कलर का है, तो लाल है, तो लाल है तो हमने निषेध किसका किया, ये काला नहीं है, सफेद नहीं है, पीला नहीं है, नीला नहीं है, ये सबका निषेध हुआ। तो व्यतिरेक का ज्ञान हुए बिना उनका भी ज्ञान आवश्यक है ना, क्योंकि लाल को तो लाल हम जान ही रहे हैं, परंतु वो ब्लू का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये लाल है, ब्लू नहीं है, ये विधि और निषेध पूर्वक हम जानते ही है। तो कहते इसलिए कहते व्यतिरेक का ज्ञान हुए बिना, यानी यह वह नहीं है, ये हम कब कह सकते हैं, उसका ज्ञान होगा तब कहेंगे। निश्चित अन्वय के ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं सकते, यह या अमुक चीज है, यह हम कब कह सकेंगे, व्यतिरेक का भी ज्ञान होना चाहिए और अन्वय का भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ बंधनीय व अबंधनीय सब वर्गणाओं का निर्देश किया है। सब वर्गणा टोटल जानेंगे तो फिर भी इसमें से ये बनती है और ये नहीं बनती है, दोनों ओर से ज्ञान होगा। जो जो सिंगल वर्गणा, जो एक प्रदेशीय संख्या, तनु वर्गणा संख्यात है, अनंत, फिर वो अग्राह्य वर्गणा है, ध्रुव है, सांतनीय, तो आगे जितने है वो सब कैसे है, बंधनीय नहीं है, ये बात इससे सिद्ध हो जाती है। अब यहीं रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तकनम सदा देख हो। मैं